आप सब का धन्यवाद अर्पण करते हैं। आप सब इतनी धूप में भी भगवान की कथा को सुनने के लिए आए हैं, बड़े आभारी हैं आप सब के। पिछले कुछ रविवारों में हम लोगों ने भगवान के अलग अलग अवतारों की चर्चा की, 10 प्रमुख अवतार, ये सबसे प्रसिद्ध अवतारों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। पिछली बार भगवान बुद्ध और भगवान कल्कि के अवतार की चर्चा की, और आज से प्रारंभ करेंगे श्रीमद् भागवत के कुछ ऐसे प्रसंगों को जो बहुत शिक्षा प्रदान करने वाले हैं, बड़े रोचक हैं, लेकिन साथ ही साथ ऐसे निर्देशों को, ऐसे संदेशों को हमें दे जाते हैं जिनके द्वारा हम अपने जीवन को बड़ी आसानी से सुखमय बना सकते हैं और साथ ही साथ इसी जीवन में रहते हुए अपने कार्य करते हुए भगवान की भक्ति करके जीवन के अंत में भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत में ऐसे कई प्रसंग हैं, जब हम विचार करने लगे कि कुछ प्रसंगों को कहेंगे तो इतने सारे प्रसंग हैं कि समझ नहीं आया कि कहां से प्रारंभ करें। बहुत से ऐसे प्रसंग हैं जहां पर कुछ भक्तों ने मृत्यु के समय कैसे व्यक्ति को अपना देह छोड़ना चाहिए उस कला को सिखलाया। कई ऐसे प्रसंग हैं जहां भक्तों ने अपने उदाहरण से जीवन में हमें कैसे रहना चाहिए उसको सिखलाया, कैसे जीवन जीना चाहिए इसको सिखलाया। तो इसीलिए ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं, हम लोग प्रयास करेंगे कुछ एक प्रसंगों पर चर्चा करने की, ताकि इन प्रसंगों के द्वारा, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत की वाणी है और साथ ही साथ आचार्यों के संदेश इनमें छुपे हुए हैं, तो उनको ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बना सके। तो आज चर्चा करना चाहते हैं एक ऐसे प्रसंग की जो भागवत का बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है, और वो है दक्ष प्रजापति और शिवजी के बीच हुआ वाद विवाद। ये भागवत के चौथे स्कंद में इसका वर्णन आता है और बहुत विस्तार से इसका वर्णन हुआ है, तो इस प्रसंग से आज प्रारंभ करेंगे और फिर धीरे धीरे भागवत के ऐसे कई प्रसंगों पर हम लोग चर्चा करेंगे। भागवत कथा ये जब हृदय में प्रवेश करती है तो हृदय को शुद्ध करती है, क्योंकि भागवत अर्थात भगवान की कथा, दो तरह के भागवत होते हैं, एक जो ग्रंथ भागवत जिसे हम श्रीमद् भागवतम कहते हैं, और दूसरे भक्त भागवत जो भागवत में कहे गए सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते हैं और उनके आधार पर अपना जीवन चलाते हैं, उन्हें भक्त भागवत कहते हैं। अर्थात ग्रंथ के द्वारा हम सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं और भक्त के आचरण के द्वारा उन सिद्धांतों को कैसे जीवन में उतारना है उसको सीखते हैं। इसीलिए हमारे लिए दोनों महत्वपूर्ण हैं, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। तो भागवत से हमें कथाएं सुननी चाहिए, उनसे निर्देश लेने चाहिए, भक्ति के सिद्धांत, जीवन के सिद्धांतों को समझना चाहिए और फिर भक्तों के जीवन में उन्हीं सिद्धांतों को देखकर उनके उदाहरण से, उनके आचरण से हमें अपना जीवन चलाना चाहिए। तो इस दृष्टि से ये भागवत कथा हमें सुननी चाहिए। तो दक्ष प्रजापति ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने पुत्रों को उत्पन्न किया ताकि प्रजनन क्रिया को कर सकें, इस सृष्टि पर संख्या को, जीवों की संख्या को बढ़ा सके, उन्हें अलग अलग शरीर प्रदान कर सके। तो ब्रह्मा जी का कार्य है सृष्टि की रचना करना, और उनमें एक हुए दक्ष भी। अब दक्ष प्रजापति की कथा प्रजापति इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रजा को उत्पन्न करने के लिए इनको शक्ति प्रदान की गई ब्रह्मा जी के द्वारा। तो अब इनकी कथा को हम लोग सुनना प्रारंभ करते हैं। भागवत में बड़े विस्तार से कथा है, और ये कथा आती है विदुर और मैत्रेय मुनि के संवाद में। विदुर और मैत्रेय मुनि का संवाद कब प्रारंभ हुआ, इसका इतिहास ऐसे है कि जब महाभारत में, आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध हुआ, हम लोग हर सोमवार को महाभारत का वर्णन कर रहे हैं, कल भी होगा। तो महाभारत में जब कौरवों और पांडवों का युद्ध होना निश्चित हो गया, तो यह स्वाभाविक था कि इस युद्ध में दोनों ओर से, या तो पांडवों की तरफ से या कौरवों की तरफ से, जितने भी महान योद्धा हैं वो युद्ध करेंगे, और ऐसा हुआ भी। लेकिन इस युद्ध में दो लोगों ने युद्ध नहीं किया, दो महान योद्धाओं ने युद्ध नहीं किया। इनका नाम नहीं आया महाभारत के युद्ध में कि इन्होंने किसी को मारा युद्ध में, या ये मारे गए, या इन्होंने युद्ध किया। तो ये दो लोग थे, बलराम जी और विदुर। दोनों महान योद्धा हैं, बलराम जी तो हैं ही महान योद्धा और विदुर भी हैं, लेकिन इन दोनों ने युद्ध नहीं किया। और इसका कारण क्या था? बलराम जी ने सोचा कि दुर्योधन मेरा शिष्य है, दुर्योधन ने बलराम जी से गदा चलाना सीखा था, तो बलराम जी ने सोचा कि दुर्योधन मेरा शिष्य है तो मैं इससे तो युद्ध कर नहीं सकता, इसके विरुद्ध युद्ध क्यों करूं, मेरा ही शिष्य है। और वैसे भी उनको दुर्योधन बहुत प्रिय था, तो इसलिए उसके विरुद्ध युद्ध करना नहीं चाहते थे। लेकिन कृष्ण ये तो दुर्योधन के विरुद्ध युद्ध करने वाले हैं, तो अगर बलराम जी दुर्योधन के विरुद्ध युद्ध नहीं करेंगे तो उन्हें कृष्ण के विरुद्ध युद्ध करना होगा, और वो भी बलराम जी कर नहीं सकते। कैसे कृष्ण के विरुद्ध वो युद्ध करें, वो तो जानते हैं कि कृष्ण उनके स्वामी हैं, कृष्ण भगवान हैं, तो वो कैसे युद्ध कर सकते हैं कृष्ण से। कृपया अपने मोबाइल्स बंद रखिए, स्विच ऑफ कर दीजिए थोड़े समय के लिए। नैमिषारण्य में जब ऋषि मुनि भागवत कथा सुनने के लिए बैठे थे हजारों वर्ष तक, तो उन्होंने कोई संपर्क नहीं किया घर पे ये बताने के लिए कि अब ये कथा चल रही है, इसलिए कृपया बंद कर दीजिए। इस मंदिर में जब आप प्रवेश करें तो कृपया अपने मोबाइल स्विच ऑफ किया कीजिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें बहुत आवश्यक कार्य है तो कम से कम साइलेंट पे रखिए ताकि बाद में आप देख सकें। कृपया इस मंदिर के अंदर, यहां इस हॉल में मोबाइल पर बातचीत नहीं करें। तो विदुर और बलराम जी नहीं थे, तो बलराम जी कैसे युद्ध कर सकते थे कृष्ण के विरुद्ध? कृष्ण स्वामी है और बलराम जी कौन है? कृष्ण का ही विस्तार है, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में, चैतन्य चरितमृत में वर्णन किया गया है, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहर द्वितीय देह श्री बलराम। कि ऐसा वर्णन है कि ये जो श्री कृष्ण है ये सर्व अवतारी, सारे अवतार इनसे आते हैं, चाहे राम हो, नरसिंह हो, वराह हो, वामन हो, ये सब कृष्ण के अवतार हैं। लेकिन बलराम जी कौन है? ताहर द्वितीय देह श्री बलराम। बलराम जी उनके ही दूसरे रूप हैं बस, और कुछ नहीं है, दोनों भगवान हैं। और अंतर क्या है? केवल रंग का अंतर है। यहां देखिए दोनों बैठे हैं, जगन्नाथ जी और बलराम, जगन्नाथ जी श्री कृष्ण हैं और बलराम जी भी बैठे हैं, दोनों में अंतर क्या है? कोई बताइए दोनों में क्या अंतर है? हाँ, श्री कृष्ण काले हैं, काले तो नहीं है, श्याम वर्ण के हैं, हम लोग उन्हें काले कह देते हैं, दरअसल उनका वर्ण श्याम वर्ण है। और ये श्याम वर्ण कैसा होता है? सारे रंगों से मिलकर जो रंग बनता है उसे श्याम वर्ण कहते हैं। तो वैसे वो श्याम वर्ण के हैं, लेकिन हम जानते नहीं है श्याम वर्ण क्या होता है, इसीलिए थोड़ा काला उनको कह देते हैं, काले नहीं है। तो फिर भी एक ही अंतर है कि वो काले हैं और बलराम जी गोरे हैं। एक ही स्वरूप धोहे भिन्न मात्र काया, केवल रंग का अंतर है बाकी एक ही स्वरूप है। तो बलराम जी तो जानते हैं कि कृष्ण कौन है, इसीलिए कैसे युद्ध कर सकते हैं उनके विरुद्ध। तो बलराम जी ने कहा कि मैं तो तीर्थ यात्रा पे जाऊंगा, ना दुर्योधन की ओर से युद्ध करूंगा ना अर्जुन की ओर से, मैं तीर्थ यात्रा में जाऊंगा। और बलराम जी तीर्थ यात्रा में चले गए उस समय। और दूसरे व्यक्ति जिन्होंने युद्ध नहीं किया वो थे विदुर जी। तो विदुर जी इन्होंने युद्ध क्यों नहीं किया? क्या ये दुर्योधन के विरुद्ध नहीं करना चाहते थे या पांडवों के विरुद्ध? हाँ, वैसे तो इनकी इच्छा ही नहीं थी कि पांडवों के विरुद्ध युद्ध करें। ऐसी इच्छा किसकी थी? भीष्म की भी नहीं थी, द्रोणाचार्य की भी नहीं थी। लेकिन फिर भी विदुर को युद्ध करना होता तो उन्हें दुर्योधन की तरफ से करना पड़ता। और इसीलिए भगवान ने योजना की। भगवान नहीं चाहते थे विदुर जी इतने महान भक्त वो युद्ध करें। तो भगवान ने क्या किया, योजना की। दुर्योधन ने अपमान कर दिया विदुर जी का युद्ध के पहले, जब हो गया तैयारी कि सब बस अब युद्ध होना ही है। दुर्योधन ने कहा कि मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा पांडवों को। भगवान ने कहा था कि अरे क्यों युद्ध करना, युधिष्ठिर युद्ध नहीं चाहते थे। तो भगवान ने कहा, जाकर शांति दूत बनकर गए और कहा कि ठीक है आप सारा राज्य ले लो। कितना बड़ा राज्य था, प्रायः पूरी पृथ्वी का राज्य। भगवान ने कहा आप सारा राज्य ले लो, केवल 5 गांव दे दो पांडवों को, बस 5 भाई हैं, 5 गांव दे दो, कोई भी गांव। और मैं ये वचन देता हूं कि पांडव विरोध नहीं करेंगे, आप कोई भी 5 गांव दे दीजिए, वो 5 गांव ले लेंगे और शांति से रहेंगे, आपको कभी तंग नहीं करेंगे। दुर्योधन ने कहा 5 गांव नहीं, सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। देखिए कितनी आसक्ति भूमि से, जैसे भूमि लेकर जाएगा। जब व्यक्ति मरता है भूमि लेकर जाता है? नहीं, कुछ नहीं ले जाता। तो दुर्योधन ने कहा भूमि नहीं दूंगा इतनी भी। तो फिर युद्ध तो होना था। और उस समय विदुर जी ने दुर्योधन को समझाया, धृतराष्ट्र को समझाया। धृतराष्ट्र से कहा कि अरे ये तुम्हारा जो पुत्र है ये तो बिल्कुल नालायक है। कोई काम का नहीं है। दरअसल जब दुर्योधन पैदा हुआ था तभी सारे ब्राह्मणों ने कहा था धृतराष्ट्र को, मार डालो इसको, एक पुत्र को मारोगे अपना पूरा वंश बचा लोगे, लेकिन अगर इसको जीवित रखा सारा वंश समाप्त होगा। धृतराष्ट्र ने सुना नहीं। तो विदुर जी ने कहा कि इस पुत्र की बात मत सुनो, आप राजा हो, आप बुद्धि का इस्तेमाल करो, आपके ही छोटे भाई के पुत्र हैं वो पांडव, अन्याय नहीं कीजिए उनके साथ, दे दीजिए राज्य उनको। अरे 5 गांव मांग रहे हैं। लेकिन विदुर की बात सुनकर दुर्योधन ने कहा कि ये विदुर ये शत्रु का आदमी है, देखो हमारे साथ रहकर हमारे टुकड़ों पर पलने वाला और शत्रु का गुणगान करता है। दुर्योधन की गुणगान को छोड़कर अर्जुन का गुणगान करता है, क्योंकि विदुर ने कहा था कि देखो अगर युद्ध होगा सब मारे जाएंगे, अर्जुन के सामने कोई टिक नहीं सकता। तो दुर्योधन को बड़ा क्रोध आया कि ये मेरे टुकड़ों पर पलने वाला व्यक्ति और मुझे ही दुश्मन की गुणगान सुना रहा है, फेंक दो इसको बाहर, निकाल दो इसको राज्य से। तो जब ऐसा कहा दुर्योधन ने और धृतराष्ट्र ने विरोध नहीं किया, देखिए धृतराष्ट्र राजा थे, वो मना कर सकते थे अपने पुत्र को, नहीं ऐसा मत कहो, विदुर ऐसे नहीं है, क्योंकि विदुर ने अपना जीवन दिया था हस्तिनापुर के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि विदुर जैसे दक्ष और बुद्धिमान मंत्री थे इसीलिए हस्तिनापुर पर कभी किसी ने आक्रमण नहीं किया था। देखिए मंत्री जो मंत्रणा देते हैं ये भी बड़े चतुर होने चाहिए। तो वैसी मंत्रणा देते थे हमेशा कि कभी कोई आपत्ति नहीं आती थी हस्तिनापुर पे। तो विदुर जैसे व्यक्ति जिन्होंने अपना जीवन दिया, जिन्होंने अपना सब कुछ सारा जीवन केवल हस्तिनापुर को सुरक्षित देखने के लिए दिया, धृतराष्ट्र अंधा था, गलत कार्य करता था, लेकिन बहुत प्रेम करते थे विदुर, उनके बड़े भाई थे धृतराष्ट्र, बहुत प्रेम करते थे विदुर, और इसीलिए चाहते थे कि ये गलत कार्य छोड़ दें, अधर्म छोड़ दें, इसलिए उनको डांटते थे। देखिए कभी कभी सच्चा प्रेम हम समझ नहीं पाते, हमें लगता है सच्चा प्रेम मतलब वो है कि जहां व्यक्ति जो मैं चाहता हूं वो कहे वो करे, ये सच्चा प्रेम नहीं है। धृतराष्ट्र को लग रहा था कि दुर्योधन मुझसे प्रेम करता है, इसीलिए हमेशा उसकी बात वो सुनता था, लेकिन सच्चा प्रेम विदुर को था। विदुर डांटते थे उन्हें, अधर्म से दूर रहने के लिए बात करते थे, धर्म के पालन पर लगाना चाहते थे, क्योंकि वो प्रेम करते थे और चाहते थे कि ये मेरे बड़े भाई ये अधर्मी नहीं बने। जैसे विभीषण, विभीषण प्रेम करता था रावण से, लेकिन रावण उसके प्रेम को समझ नहीं पाया। धृतराष्ट्र विदुर के प्रेम को समझ नहीं पाया, क्योंकि धृतराष्ट्र के लिए रावण के लिए प्रेम की एक ही परिभाषा थी, प्रेम मतलब वो व्यक्ति जो मैं जैसा चाहूं वैसा करे, मेरी योजनाओं में मेरे भोग में मेरे आनंद में विरोध नहीं करे, वो सच्चा प्रेम था। वो सच्चा प्रेम नहीं है जहां हम प्रेम की बात करते हैं और सच्चे प्रेम की बात करते हैं। तो सच्चा प्रेम किसी चीज की कामना नहीं करता, सच्चे प्रेम में व्यक्ति को अभिलाषा नहीं होती, आशा नहीं होती। जहां आशा है, जहां किसी चीज के लिए हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, कुछ पाने के लिए प्रेम करते हैं, वो सच्चा प्रेम नहीं है, वो व्यापार है। हम कहते हैं हम इनसे प्रेम करते हैं, लेकिन हमारे हृदय में आशा है हमें इससे कुछ चाहिए, वो व्यापार है। सच्चा प्रेम अहेतु की अप्रतिहता, जिसका कोई हेतु नहीं है। भक्त भगवान से प्रेम करता है, कोई कामना नहीं करता, यह सच्चा प्रेम है। भक्त भगवान के पास इसलिए नहीं आता कि उसको कुछ चाहिए, मेरे जीवन में कष्ट है भगवान दूर करेंगे, मुझे कुछ चाहिए भगवान प्रदान करेंगे, नहीं, ये सच्चा प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम कि मैं भगवान के पास जाऊं, भगवान मुझे कुछ भी नहीं दे कोई बात नहीं, फिर भी मैं भगवान से प्रेम करता, कोई आशा नहीं है, ये सच्चा प्रेम है। और विदुर ऐसा प्रेम करते थे धृतराष्ट्र से, कोई आशा नहीं थी कि धृतराष्ट्र मुझे कुछ दे दे, कुछ पद दे दे, कुछ धन दे दे, सच्चा प्रेम था। इसीलिए समझा रहे थे कृष्ण भगवान हैं, आप जिस पथ पर चल रहे हैं आप अधर्म कर रहे हैं, रुक जाइए अभी भी समय है। क्या हमारे जीवनों में ऐसा नहीं होता? बहुत बार होता है, हम कोई गलत कार्य करने जाते हैं, अधर्म के मार्ग पर चलने जाते हैं, कोई हमारा प्रियजन हमें रोकता है, और प्रियजन ही क्यों, हमारा मन हमें रोकता है, हमारा मन हमें रोकता है मत करो, अपराध है अधर्म है। लेकिन हमारी इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि हम उस कार्य को कर बैठते हैं। वैसे जो ज्ञान हमें हमारे मन के द्वारा दिया जाता है वो परमात्मा देते हैं, परमात्मा हमें समझाते हैं धर्म क्या है अधर्म क्या है, हम आवाज नहीं सुन पाते परमात्मा की, इसीलिए अधर्म कर बैठते हैं। तो विदुर का प्रेम सच्चा प्रेम था, इसीलिए सच्चे प्रेम की परिभाषा यह है कि जहां कोई कामना नहीं हो, किसी चीज को पाने की इच्छा से किया गया प्रेम प्रेम नहीं है। इसीलिए भगवान से प्रेम करना हमें सीखना चाहिए। भक्ति अहेतुकी अप्रतिहता। ऐसी भक्ति जहां हम कुछ मांगे नहीं भगवान से, कोई कामना नहीं करें, केवल प्रेम करें, कितनी सुंदर व्यवस्था वो होगी। आप सोचिए कितना सुंदर वो समाज होगा कि उस समाज में हर व्यक्ति कृष्ण से प्रेम करता है और कुछ चाहता नहीं है। ध्रुव महाराज के सामने जब भगवान आए, ध्रुव महाराज ने क्या मांगा? भगवान ने कहा मांगो, क्या चाहिए? ध्रुव ने कहा वरम न याचे, स्वामी कृतार्थ हो उसमें वरम न याचे, कि हे स्वामी, हे कृष्ण, हे भगवान, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए, कोई वर नहीं चाहिए। कौन थे वो ध्रुव? 6 महीना कड़ी तपस्या की, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। पहले महीने में केवल पत्ते खाकर, सूखे पत्ते खाकर जीवित रहे, फिर जल पीकर जीवित रहे, हवा लेकर जीवित रहे, अंत में हवा भी बंद कर दी। क्यों? एक राज्य को पाने के लिए। ध्रुव की इच्छा थी कि मुझे मेरे पिता से बड़ा राज्य मिले, ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहता हूं मैं। और जब भगवान सामने आए तो ध्रुव कहते हैं स्वामी कृतार्थ हो उसमें वरम न याचे, कोई वर नहीं चाहिए, ये प्रेम है। तो जब विदुर ने ऐसा कहा तो आप सोचिए, वो विदुर जो हृदय से प्रेम करता था धृतराष्ट्र से, जो हस्तिनापुर का अच्छा चाहता था, जिसने अपना जीवन दिया था हस्तिनापुर के लिए, उसे ऐसे उठाकर बाहर फेंक देने के लिए कहा गया। कितना कष्ट हुआ होगा उस व्यक्ति को। कभी कभी हम लोग भी किसी स्थान के लिए, किसी परिवार के लिए, किसी समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं और फिर कभी कभी हमें उससे धोखा मिल जाता है, टूट जाता है हृदय, व्यक्ति कभी कभी आत्महत्या कर लेता है। लेकिन विदुर ने क्या किया? विदुर ने एक बहुत सुंदर उदाहरण हम सबके सामने प्रस्तुत किया। जब दुर्योधन ने कहा निकाल कर फेंक दो इसको बाहर, शत्रु का आदमी है ये जासूस है शत्रु का, यहां रहकर हमारी बातें शत्रुओं को बताता है। दो चीजों को देखा विदुर ने, एक अपने कर्मों को और दूसरा भगवान की योजना। विदुर ने माना, भागवत में वर्णन किया गया है कि विदुर दोनों चीजों को देख रहे थे, भगवान की बहिरंगा और अंतरंगा शक्ति। अर्थात विदुर देख रहे थे कि ये जब जो भी मेरे साथ हो रहा है मेरे ही कर्मों का फल है, लेकिन दूसरी ओर विदुर देख रहे थे ये भगवान की योजना है। भगवान चाहते हैं कि मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊं। तो विदुर सोचने लगे कि इतने वर्ष बीत गए, बहुत वर्ष हो गए थे विदुर को, समय नहीं मिला तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए, क्योंकि मंत्री थे, इतने बड़े राज्य के मंत्री, रोज कुछ ना कुछ कार्य होता था। सरल नहीं होता है इतने बड़े राज्य के मंत्री होना, और ये तो प्रमुख मंत्री थे, बाकी सारे लोग इनके अधीन थे, केवल इनके ऊपर भीष्म, द्रोणाचार्य और धृतराष्ट्र, बस। द्रोणाचार्य भी मान लीजिए इनके ही अधीन थे, इनके ऊपर केवल भीष्म और धृतराष्ट्र थे। तो इतने बड़े पद पर होते हुए समय नहीं मिला, तो युधिष्ठिर विदुर ने सोचा बहुत अच्छा है, अब समय आया है तीर्थ यात्रा पर जाने का। तो विदुर ने क्या समझाया कि जब जीवन में ऐसे कष्ट आए, देखिए कितना बड़ा कष्ट था, उस व्यक्ति के स्थान पर रहकर सोचिए जिसने अपना जीवन दिया है उस राज्य के लिए, उस स्थान के लिए, और आज भी उसके हृदय में केवल उस स्थान का अच्छाई है, और उसको कहा जा रहा है फेंक दो बाहर, चोर है ये, जासूस है ये, आरोप लगाए जा रहे हैं। विदुर ने स्वीकार किया। तो विदुर दिखला रहे हैं कि ऐसी अवस्था में भी हमें भगवान की योजना को देखना चाहिए, और ये योजना थी भगवान की, इसका प्रमाण अभी कुछ देर में देंगे। तो उस समय विदुर ने सोचा ये भगवान की योजना है, वो चाहते हैं। उन्होंने अपना धनुष बाण दुर्योधन के दरवाजे पर रख दिया, महल के दरवाजे पर। देखिए भागवत में ये वर्णन क्यों किया गया कि उन्होंने अपना धनुष और बाण रख दिया, और कोई चीज का वर्णन क्यों नहीं किया? इसलिए ये बतलाने के लिए कि वो योद्धा थे, वो युद्ध कर सकते थे, लेकिन क्योंकि दुर्योधन ने उनको चले जाने के लिए कहा, उन्होंने त्याग दिया। और हम सबको सिखलाया कि जब हमारे जीवन में ऐसे कष्ट आए तो यही चीज माननी चाहिए। आप जान लीजिए हमारे जीवन में जो कुछ होता है केवल दो कारण है उसके, दो से तीसरा कोई कारण नहीं है। जितने भी कष्ट जीवन में आते हैं, जो भी बुरा हमारे साथ होता है, जो भी अच्छा हमारे साथ होता है, इसके दो ही कारण है। पहला हमारे कर्म। आज से पहले या इस जीवन से पहले हमने जो भी कर्म किए हैं उसके फल स्वरूप हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, इसको मानना चाहिए। तो पहला कारण हमारे जीवन में जो कुछ होता है वो ये है कि हम कर्मों से बंधे हैं। इसीलिए जब भी जीवन में कोई कष्ट आए तुरंत स्मरण करना चाहिए विदुर का। इतना कष्ट तो हमारे जीवन में आएगा नहीं, प्रायः आ भी सकता है, तो उस समय विदुर का स्मरण कीजिए। क्या किया उन्होंने? चुपचाप चले गए वहां से, कोई विरोध नहीं किया। विदुर ने युद्ध करना प्रारंभ नहीं किया, चाहते तो कर सकते थे। आप सोचिए एक मंत्री, उसकी कितनी शक्ति होगी, उसके खुद के आदमी होंगे उनके, वो चाहते तो विभाजन कर देते, वो चाहते तो युद्ध कर लेते, विद्रोह कर देते, चुपचाप चले गए। उन्होंने सिखलाया कि हमें स्वीकार करना चाहिए हमारे कर्मों का फल है, इसीलिए चुपचाप रखा, बिना किसी को बताए चले गए वहां से। तो पहली चीज हमारे जीवन में जो होता है वो कर्मों का फल है, इसको स्वीकारना चाहिए। किसी दूसरे को द्वेष के द्वारा दोष नहीं देना चाहिए, इस व्यक्ति के कारण मेरी ऐसी स्थिति हुई, उस व्यक्ति के कारण मेरी ऐसी स्थिति हुई, इस व्यक्ति को मैं छोड़ूंगा नहीं, जीवन भर इसको याद रखूंगा। क्या लाभ है जीवन भर याद रखे? वो व्यक्ति प्रसन्न रहेगा, आप दुखी रहोगे, बस इतना ही होगा। इसीलिए हमें ये जानना चाहिए कि मेरे कर्म है, जो भी हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, बहुत सारा धन मिला मेरे कर्म है, भगवान की कृपा है, बहुत दुख आया मेरे कर्म है, भगवान की कृपा है, सुख में दुख में दोनों में भगवान की कृपा को मानना। तो पहली चीज जैसे हम बता रहे थे हमारे जीवन में जो भी होता है दो कारणों से, पहला हमारे कर्म और दूसरा भगवान की योजना, बस यही दो कारण है, तीसरा कोई कारण नहीं है। या तो भगवान की योजना है, जैसे परीक्षित महाराज भगवान के बड़े महान भक्त हैं, जंगल में जाते हैं, प्यास लगती है, पानी ढूंढते हैं, एक ऋषि बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, ध्यान मग्न हैं, आंखें बंद हैं। परीक्षित महाराज पूछते हैं उस सन्यासी से, उस ऋषि से, थोड़ा पानी मिलेगा कहीं पर, प्यास लगी है, वो ध्यान मग्न है, उत्तर नहीं देते। परीक्षित महाराज को क्रोध आ जाता है, एक मरा हुआ सांप उठाते हैं और उस ऋषि के गले में डाल देते हैं। ये क्या परीक्षित महाराज के कर्म है या भगवान की योजना? कौन बताएंगे? भगवान की योजना है, क्योंकि परीक्षित महाराज जैसे महान भक्त, अरे कोई थोड़ा भी भक्ति कर लेता है, आप भी भक्ति नहीं करते, मान लीजिए जो भक्त भी नहीं है, एक साधारण व्यक्ति अगर कहीं जाता है, किसी ऋषि मुनि को देखता है, वो ध्यान मग्न है, आंख बंद किए बैठे हैं और वो जवाब नहीं देते, तो क्या हम में से कोई ऐसा कार्य कर सकता है, मरा हुआ सांप उनके गले में डाल सकता है उनका अपमान करने के लिए? नहीं, हम क्या करेंगे? चुपचाप चले जाएंगे वहां से। ठीक है भाई, आप ध्यान मग्न हैं, क्षमा कीजिए, किसी और से पूछ लेंगे। लेकिन परीक्षित महाराज जैसा भक्त सांप डाल देता है, ये भगवान की योजना, ये उनके कर्म नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे जीवन में जो होगा वो कर्म होंगे, क्योंकि हम परीक्षित महाराज जैसे महान भक्त नहीं है। तो ये मत सोचिएगा कि रविवार को मेरी इच्छा नहीं हो रही मंदिर जाने की, ये भगवान की योजना है। बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए ऐसे लोग ऐसा कहते हैं, उनको पूछते हैं आप मंदिर नहीं आते, जब भगवान की इच्छा होगी तब आएंगे, जब वो लाएगा तब आएंगे। उस चीज में वो भगवान की योजना, बाकी चीजों में भगवान की योजना नहीं मानते हैं। तो इसीलिए ये जान लीजिए कि भगवान सीधे आपके लिए योजना नहीं बनाने वाले हैं, वो भक्तों के लिए बनाते हैं, महान भक्तों के लिए, लेकिन हमारे लिए जब तक कर्म है कर्म ही चलेंगे। तो विदुर जी ने इस बात को सिखलाया। देखिए कितना सुंदर संदेश, कितना सुंदर उपदेश उन्होंने अपने आचरण से हमें दिया। जीवन में कष्ट आए, दुख आए, अपमान सहना पड़े, उस जगह से हस्तिनापुर जिसके लिए वो जिए थे, बचपन से कभी बाहर नहीं गए थे हस्तिनापुर के, यानी छोड़ने का उनको विचार नहीं आया था, बाहर गए होंगे लेकिन छोड़ने का विचार नहीं आया था कि एक दिन मैं हस्तिनापुर छोड़ दूंगा, नहीं, उस हस्तिनापुर को उन्हें छोड़ना नहीं पड़ रहा, जबरदस्ती उनको बाहर भेजा जा रहा है, अपमान करके भेजा जा रहा है, वो भी मान सम्मान से नहीं, कि मान लीजिए धृतराष्ट्र ने कहा होता ठीक है कोई बात नहीं आप जाना चाहते हैं आपके लिए मैं रथ देता हूं, घोड़े देता हूं, आपको सोना चांदी, आपने इतनी सेवा की, इतने वर्ष आपने सेवा की, तो आपके लिए ये उपहार देता हूं, आप उपहार लेकर जाइए। कुछ नहीं, एक सैनिक साथ में नहीं गया, अकेले गए, इतने बड़े राज्य के मंत्री अकेले बिना किसी को बताए कहां गए किसी को नहीं पता। तो उन्होंने एक हमारे सामने आदर्श रखा कि ऐसे हमें आचरण कर। तो जब विदुर जी भ्रमण कर रहे थे, करते करते वे, उनको पता नहीं था महाभारत का युद्ध हो गया, युद्ध में सारे मारे गए, उसके बाद श्री कृष्ण और बलराम जी भी इस धराधाम को छोड़कर चले गए, यादवों का नाश हो गया, आपस में लड़कर मर गए, ये सारी कथा हो गई। ये सब कथा विस्तार से हम लोग महाभारत की कथाओं में कहेंगे, महाभारत की कक्षाओं में, इसलिए आज नहीं कह रहे हैं। बहुत सुंदर कथा है कि यदुवंशी आपस में क्यों मरे, वो भी बहुत सुंदर, उसके कई कारण हैं, आचार्यों ने समझाए हैं, उसको भी कहेंगे। तो ये सारा कुछ हो गया, विदुर को कुछ नहीं पता, विदुर जी घूम रहे हैं अलग अलग स्थानों पर, धाम में भगवान के। देखिए वैसे भी पूर्व समय में एक नियम था कि एक उम्र के बाद, अपना कर्तव्य पूरा करने के बाद, व्यक्ति घर को त्याग कर फिर भगवान के अन्य अलग अलग स्थानों में जाया करते थे। हाँ, इसको आजकल लोग थोड़ा गलत मानते हैं कि वो सोचते हैं कि भक्ति बुढ़ापे में करनी चाहिए। देखो पहले के समय में लोग बूढ़े होने के बाद जाया करते थे, आप इतनी युवा अवस्था में भक्ति नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। वे लोग सब भक्ति करते थे, केवल वृद्ध अवस्था में पूर्ण समर्पण कर देते थे भगवान को। तो इसीलिए हमें ये कार्य सीखना चाहिए कि हमें भी वृद्धावस्था में या जितना जल्दी हो सके भगवान के धाम में जाना या भगवान की तीर्थ स्थलों में जाना अनिवार्य है, उससे हमारी चेतना बदलती है। नहीं तो रोज वही वही शिप देखना, वही लोगों को देखना, वही बटन ऑन करना, वही मशीन चलाना, जो भी है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत बदलाव आवश्यक है। तो विदुर जी चले गए और फिर कई समय बाद, काफी समय बाद उद्धव से मिले। अब उन्हें पता नहीं था कि महाभारत का युद्ध हो चुका है, कृष्ण जा चुके हैं। तो उद्धव से मिले तो पूछने लगे कि बहुत अच्छा, आपको देखकर बड़ा आनंद आया, कृपया बताइए कि कैसे हैं, सब लोग ठीक हैं? महाभारत के वर्णन तो उन्होंने नहीं पूछा, लेकिन पूछने लगे कि आपके वहां पर सब ठीक हैं, श्री कृष्ण ठीक हैं, बलराम जी ठीक हैं, अन्य सारे लोग ठीक हैं कि नहीं? तो उस समय उद्धव क्या जवाब देते, सारे तो लोग मर चुके थे, श्री कृष्ण बलराम जा चुके थे अपने धाम, कोई बचा नहीं था। लेकिन उद्धव ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात विदुर को बतलाई। हाँ, उन्होंने ये कहा कि श्री कृष्ण और बलराम जी अब इस पृथ्वी पर नहीं है। ये सुनकर विदुर बड़े दुखी हो गए, भगवान नहीं है, चले गए। हाँ, वो चले गए। फिर उन्होंने युद्ध का वर्णन किया कि युद्ध में सारे लोग मारे गए, कोई बचे नहीं, केवल पांडव जीवित रहे और तीन लोग कौरवों की तरफ से जीवित रहे। तो ये सुनकर बड़ा दुख हुआ विदुर को। और फिर एक महत्वपूर्ण बात उद्धव ने बताई। उद्धव ने कहा आपको कुछ बताना चाहता हूं, जब श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर जा रहे थे, आप सब जानते हैं प्रभास क्षेत्र में श्री कृष्ण ने ये लीला की, तो जब वो जा रहे थे तो उन्होंने आपका स्मरण किया विदुर। आप सोचिए विदुर की क्या स्थिति हुई होगी। विदुर सोच रहे हैं क्योंकि भगवान जाने के समय केवल दो लोगों से मिले थे, वो थे उद्धव और मैत्रेय मुनि, तीसरा कोई नहीं था उस समय जब भगवान जा रहे थे, और उन्होंने उद्धव को ज्ञान दिया था जिसको श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में शिवदेव गोस्वामी ने कहा, और उसको उद्धव गीता कहा जाता। जैसे भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई ऐसे ही उद्धव को भी ज्ञान दिया है भगवान ने, उसको उद्धव गीता कहते हैं। कभी समय मिला तो केवल उद्धव गीता पर चर्चा करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण उसमें उन्होंने उपदेश निर्देश दिए हैं, बहुत स्पष्ट। जैसे विग्रह की सेवा क्यों की जाती है या विग्रहों की सेवा कैसे करनी चाहिए, मंदिर क्यों स्थापित करने चाहिए, ये सब भगवान ने खुद बताया उद्धव को। तो जब भगवान जा रहे थे दो ही लोगों को उन्होंने उपदेश दिया, एक उद्धव और दूसरे मैत्रेय मुनि। तो कितना महत्वपूर्ण वो समय होगा कि भगवान अब इस पृथ्वी को छोड़कर जा रहे हैं और केवल दो लोगों से मिले, और उद्धव को उन्होंने भेज दिया कि तुम जाओ बद्रिक आश्रम की ओर, बद्री धाम की ओर। क्यों भेजा? आचार्य बताते हैं कि भगवान ने बद्रीनाथ की ओर इसलिए भेजा क्योंकि श्री कृष्ण जब यहां थे तो पृथ्वी पर सारे ऋषि मुनियों से मिले, लेकिन केवल बद्रीनाथ में रहने वाले ऋषि मुनियों से मिल नहीं पाए भगवान, और अब जा रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने उद्धव को कहा कि कम से कम तुम मेरा संदेश उनको दे दो जाकर। और उस समय उन्होंने विदुर का स्मरण किया। तो देखिए, हम पहले आपको बतला रहे थे कि विदुर ने भगवान की योजना माना कि मैं चला जाऊं, मैं यहां से इस समय ये योजना है भगवान की, और भगवान ने इसको प्रमाणित किया उनका स्मरण करके, और उन्होंने उद्धव से कहा कि आपको ये मिलेंगे, आगे चलकर विदुर मिलेंगे, उनको मेरा संदेश देना। तो भगवान ने पहले से योजना कर ली थी कि हाँ विदुर जाएंगे और उनको उद्धव संदेश देंगे। तो उद्धव मिले, उद्धव से प्रश्न उत्तर इत्यादि हुए, फिर उद्धव ने कहा कि आप मैत्रेय मुनि के पास जाइए, जो भी हमने सुना है श्री कृष्ण से अंत समय में, जहां श्री कृष्ण बस अब जा रहे हैं इस पृथ्वी को छोड़कर, तो वो मैत्रेय मुनि आपको सुनाएंगे। तो तब विदुर मैत्रेय मुनि के पास जाते हैं और मैत्रेय मुनि से कई प्रश्न करते हैं, उनसे कहते मुझे सब बताइए, ये रचना कैसे होती है, ये ब्रह्मांड कैसे बनता है, कैसे अलग अलग योनियां आती हैं। और फिर उन्होंने बहुत सुंदर प्रश्न किया, विदुर कहते हैं क्रीड़न विधत्ते द्विजगो सुराणा क्षेमाय कर्माणि अवतार भेदे मनो न तृत्यत्यपि शृण्वतामना सुश्लोक मौलेश्वरितामृतानि। वो कहते हैं विदुर जी कि हे मैत्रेय मुनि, आप अब मुझे भगवान के अलग अलग अवतारों की कथा बताइए। क्रीडन विदत्ते द्विजगो सुराणाम क्षेमाय कर्माणि अवतार भेदे। ऐसे भगवान जो सदैव भक्तों की रक्षा करते हैं, गायों की रक्षा करते हैं, द्विजगो सुराणाम, अब मुझे उनके अवतारों की कथा सुनाइए और कैसे ये सृष्टि बनती है इत्यादि। क्यों? मनो न तृप्त्यति शृण्वताम नाम। वो कहते मन कभी तृप्त नहीं होता, मेरा मन कभी ये नहीं कहता कि बस बहुत सुन लिया अब कथा नहीं। मनो न तृप्त्यति शृण्वताम नाम सुश्लोक मौलेश्वरितामृतानि। तो फिर मैत्रेय मुनि कथा कहना प्रारंभ करते हैं, और कथा कहते कहते वो इस ब्रह्मांड की रचना को कहते हैं, और उसमें वो मनु का वर्णन करते हैं, और फिर दक्ष प्रजापति की ओर आते हैं, और फिर वो कहते हैं कि दक्ष प्रजापति की 16 पुत्रियां थी, और फिर उन सब के नाम कहते हैं, इस पहली पुत्री ये थी, इसके पति ये थे इसके ये पुत्र हुए, दूसरी पुत्री उनके पति ये थे उनके पुत्र, तीसरी चौथी, ऐसे कहते कहते 15 पुत्रियों का वर्णन कर देते हैं और फिर 16वीं पुत्री का वर्णन करते हैं। और वो विदुर से कहते हैं कि दक्ष की 16वीं पुत्री थी सती, बहुत सुंदर थी, अपने पति के प्रति बहुत समर्पित थी, उसका विवाह शिवजी से हुआ लेकिन उसकी कोई संतान नहीं हुई। और उसका कारण ये था कि उसने बहुत छोटी उम्र में अपने देह को त्याग दिया, योग अग्नि में जला दिया। तो जब विदुर ने यह सुना तो विदुर ने पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो मैत्रेय मुनि ने कहा ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शिवजी और दक्ष के बीच द्वेष उत्पन्न हुआ और इतना द्वेष हो गया कि सती को अपना देह त्यागना पड़ा। तो विदुर ने कहा नहीं नहीं, आप विस्तार से समझाइए क्या हुआ था। क्योंकि शिवजी महान भक्त हैं, वो सदैव शांत रहने वाले हैं, वो किसी से द्वेष नहीं करते, उनका तो नाम ही शिव है, शिव मतलब सब जगह जो मंगल होता है, शिव का अर्थ है मंगल। तो जहां वो, जिनका नाम ही शिव है जो मंगल करने वाले हैं, ऐसे शिव का अमंगल कैसे हो गया, उनकी पत्नी ने कैसे अपने देह को त्याग दिया, और वो भी किस लिए, क्योंकि दक्ष जो सती के पिता हैं उनका और द्वेष हो गया। तो फिर मैत्रेय मुनि दक्ष की कथा कहना प्रारंभ करते हैं। तो अब ये कथा, आज का जो प्रवचन है ये अब प्रारंभ होगा, अभी तक केवल भूमिका चल रही थी, बैकग्राउंड। तो अभी आप लोग तैयार हो जाइए, आंखें खोल लीजिए, रेडी हो जाइए कि हाँ अब आज का प्रवचन प्रारंभ हो रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमने सोचा था कि आज दक्ष की कथा पूरी कर देंगे लेकिन भगवान की योजना कुछ और थी। तो दक्ष की कथा कहने लगे कि एक समय देवताओं ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और उस यज्ञ में सभी आए, ब्रह्मा जी, शिव जी या अन्य जितने भी देवता वहां पर थे सब आए, ऋषि मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनि, केवल मनुष्य नहीं गए थे, मनुष्यों को अनुमति नहीं है वहां पर जाने की, ये देवताओं का यज्ञ था। तो देवताओं का यज्ञ हुआ, इतना बड़ा यज्ञ था और फिर उसमें दक्ष ने प्रवेश किया, दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति क्योंकि उनको शक्ति प्राप्त है ब्रह्मा जी से, इसीलिए दिखने में बड़े कांतिवान है, जब वो प्रवेश करते हैं तो उनको देखते ही सारे लोग उठकर खड़े हो जाते हैं, उनका ऐसा प्रभाव है सब लोग। वैसे एक नियम भी है, जब हम किसी वरिष्ठ को, किसी भक्त को देखें तो हमें उठकर खड़े हो जाना चाहिए उनका आदर करने के लिए। तो सारी सभा के लोग खड़े हो गए, केवल दो लोग बैठे रहे, एक थे ब्रह्मा जी और दूसरे भोलेनाथ, वो दोनों बैठे रहे। क्यों बैठे रहे? ब्रह्मा जी कौन है, वो तो श्रेष्ठ है, उनके उनके पिता है, तो वो तो बैठे रहेंगे, वो थोड़ी अपने उठकर पुत्र का आदर सम्मान करेंगे। और दूसरे शिवजी, तो शिवजी क्यों बैठे रहे? क्योंकि देवताओं में उनका भी स्थान श्रेष्ठ है, सारे देवताओं से वो श्रेष्ठ है, दक्ष वैसे उनसे श्रेष्ठ नहीं है। तो दक्ष आए, उन्होंने अभिवादन किया, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया दक्ष ने, और फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है बैठो अपने स्थान पर। तो यहां ब्रह्मा जी बैठे, यहां शिव जी बैठे, अब दक्ष का स्थान वहां है। ब्रह्मा जी को आके प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने कहा बैठो। तो जैसे ही जाने लगे बैठे तो देखा शिव जी बैठे हैं, खड़े नहीं हुए, तो दक्ष को बड़ा क्रोध आ गया। तो बैठने से पहले ही उसने बोलना शुरू कर दिया। क्रोध क्यों आया? कि ये शिव, ये जो मेरी पुत्री का पति है, मतलब मुझसे छोटा है, मैं तो ससुर हूं, ये तो दामाद है, तो इसको खड़ा होना चाहिए मेरे लिए, मैं आ गया तो मतलब मेरा अपमान कर दिया इसने, तो इसीलिए बोला। तो देखिए यहां पर एक बहुत सुंदर सिद्धांत हम सीखते हैं कि हमें कभी मान की कामना नहीं करनी चाहिए कि ये व्यक्ति मुझे मान सम्मान देगी, क्योंकि जहां मान की कामना आती है और मान नहीं मिलता तो क्रोध प्रकट हो जाता है, तुरंत क्रोध आ गया। वैसे क्रोध नहीं आना चाहिए, शिवजी इतने महान व्यक्ति हैं, शिवजी की तुलना तो वो अपने से कर ही नहीं सकता, लेकिन क्योंकि मेरी पुत्री का विवाह इससे हुआ है तो ये मेरे से छोटा हो गया, इसीलिए खड़ा नहीं हुआ, मुझे आदर नहीं दिया, तो उन्होंने सबके सामने कहना प्रारंभ किया। और क्या कहा उन्होंने, दक्ष कहने लगे, आप सभी जो लोकपाल सभी देवता यहां जो है वो सुने, मैं जो भी कह रहा हूं द्वेष से नहीं कह रहा, कह रहा था द्वेष से। तो इसीलिए देखिए किसी ने पूछा था क्या कि आप द्वेष से कह रहे हो, लेकिन अपने आप कहा मतलब वो द्वेष से कह रहा था। जैसे अगर किसी ने चुराया हो कोई चीज और कोई व्यक्ति आ जाए खड़ा होकर, मैंने नहीं चुराया, मैंने नहीं चुराया, बोले अरे मैंने पूछा ही नहीं अभी किसी ने चुराया, मतलब तुमने ही चुराया। तो ऐसे ही दक्ष का था, मैं जो कह रहा हूं द्वेष से नहीं कह रहा, कोई अहंकार से नहीं कह रहा। तो क्या कहा उन्होंने, उन्होंने कहा ये देखिए जो शिव है, उनकी ओर ऐसे इशारा करके बोलने लगे, देखिए ये जो शिव है ये यशोग्न, ऐसे शब्दों को इस्तेमाल किया, यशोग्न निरपत्र, यशोग्न मतलब सारे यश को समाप्त कर देने वाला है, इसके कारण मेरा यश समाप्त हो गया, इससे संबंध करके। और तो यशोग्न, वैसे उस श्लोक का अनुवाद देते हुए आचार्य समझाते हैं कि इसको दूसरी तरह से भी लिया जा सकता है। तो दक्ष ने कहा ये यशोग्न है, सारे यश को इसने मार डाला है मेरे, और निरपत्र पर, निरपत्र मतलब बेशरम आदमी है, ऐसे ही घूमता रहता है, सर पर पूरे शरीर पर राख लगाकर, और रहता भी कहां पर है, ये शमशान में रहता है। शिवजी विरक्त व्यक्ति है, उनका कोई घर नहीं है, वो घर बनाते ही नहीं है, एक बार बनाया था गलती से, वो भी रावण ले गया उठा के। तो शिवजी घर बनाते ही नहीं, पेड़ के नीचे रहते हैं। पार्वती से विवाह करके आए, पार्वती बड़ी प्रसन्नता से आई, इतने महान देवता से महादेव से मेरा विवाह हुआ है, कितना बड़ा घर होगा, नौकर चाकर दासियां ये सब आशा करती हुई आ रही है। सारे जो बाराती थे चले गए, शिवजी अपना एक पेड़ के नीचे बैठ गए। पार्वती ने पूछा महल कहाँ है, बोले वो वाले पेड़ के नीचे, तुम बैठ जाओ ये पेड़ के नीचे, बस यही महल है मेरा, यही शिवजी है बस। तो वैरागी है। तो दक्ष कहने लगा कि ये शमशान में रहने वाला, अपने शरीर पर राख लगाकर घूमने वाला ये व्यक्ति यशोग्न निरपत्रपा बेशरम, निरपत्रपा में जिसको कोई शर्म नहीं है, ऐसे ही घूमता, कपड़े भी नहीं पहनता, ऐसे ही कुछ गले में डाल, गले में सांप डालकर घूमता है। एक्चुअली देखा जाए एक दृष्टि से तो सही भी है ना, शिवजी के जैसे कोई घूमता है, गले में सांप रहेगा, नहीं तो वो माला पहन लेंगे, कुछ राख लगा लेंगे, ये उनकी महानता का लक्षण है कि इतने वैरागी हैं, इतने बड़े स्तर पर होते हुए भी उनको शरीर की कोई चिंता नहीं है। शिवजी हमें सिखलाते हैं कि हमें शरीर से ज्यादा आध्यात्मिक कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, शिवजी हमें सिखलाते हैं कि मन भगवान में होना चाहिए, बाहरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यशोग्न इसका अर्थ आचार्य कहते हैं कि वो व्यक्ति जिसका यश इतना बढ़ गया है कि उसने बाकी सबके यशों को मार डाला है, उसको यशोग्न कहते हैं। अर्थात दूसरी दृष्टि से दक्ष उनका गुणगान कर रहा था कि ये यशोग्न है। और निरपत्रप, निरपत्र ने बेशरम, लेकिन निरपत्रप का दूसरा अर्थ होता है निरपत्र, मतलब जिस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, जिसका कोई नहीं है, जिसको तन ढकने के लिए भी कुछ नहीं, जिसको किसी ने सहारा नहीं दिया, पत्र कोई सहारा नहीं है, ऐसे लोगों को आश्रय प्रदान करते हैं शिवजी। निरपत्र पा यानी जिसका कोई नहीं है, जिसको कोई सहारा देने के लिए तैयार नहीं है, उसको शिवजी सहारा देते हैं। उदाहरण के लिए भूत प्रेत, भूत प्रेतों को और कौन सहारा देगा, हमारे पास आएंगे तो हम तो बोलेंगे भाई आप बाहर ही रहिए, मंदिर की सीमा से बाहर रहिए, शिवजी उनको भी सहारा दे, कोई बात नहीं आ जाओ संरक्षण। इसीलिए जब शिवजी शादी करने गए थे, आपको कई बार सुना चुके हैं, तो जब दूसरी शादी विवाह जब पार्वती से हुआ था, तो शिवजी की शादी में सारे जब शिवजी चले थे, अब एक तो उनका वाहन भी बड़ा बढ़िया है, कोई कोई रथ ना, कोई रथ नहीं लेते हैं शिव जी, ऐसा नहीं कि बड़ा सुंदर पांच घोड़ों से जुता हुआ रथ है सोना लगा हुआ, नहीं बैल है एक, बैल पे बैठकर चल। शादी करने भी उसी पर गए थे, बताइए इतने वैरागी हैं। और कोई अपना रूप बदला नहीं उन्होंने शादी के समय, जैसे बाकी लोग करते हैं, वैसे तो आदमी को देख लो तो, लेकिन शादी के दिन वो पहचान में ही नहीं आता है, अरे क्या हो गया तुम्हारा, एकदम बदला गया वो, इतना सब मुंह पर हो जाता है उसके कि ऐसा लगता है कि इससे सुंदर व्यक्ति है ही नहीं कोई। लेकिन शिव जी ने वो भी नहीं किया, ऐसे ही चले गए शादी में, बैल के ऊपर बैठे हुए, और जब जा रहे थे तो उनके आसपास भूत लहरा रहे थे। इसीलिए पार्वती की जो मां थी मेनका, उन्होंने देखा जैसे तो बेहोश हो गई, उन्होंने कहा कि अपनी पुत्री को जहर दे दूंगी लेकिन इससे विवाह नहीं कराऊंगी, अड़ गई थी। खैर वो तो हम बार बार आपको सुना चुके हैं इसलिए वो नहीं सुनाएंगे। तो शिवजी ये निरपत्रप यानी जो भी है व्यक्ति जिसको कोई और सहारा नहीं है उसको शिवजी सहारा देते हैं, ये तो गुणगान हो गया उनका। तो और भी कहने लगा, दक्ष कहने लगा कि मेरी कोई इच्छा नहीं थी अपनी पुत्री से इसका विवाह करने की, कौन विवाह करना चाहेगा आप बताइए, आप अपनी लड़की के लिए लड़का देख रहे हैं और एक प्रस्ताव आता है, आप बोलते लड़का क्या करता है, पेड़ के नीचे बैठा रहता है, कौन से पेड़ के नीचे, शमशान में, क्या क्या पहनता है, राख लगा के बैठा रहता है, किसके साथ घूमता है, भूत प्रेतों के साथ घूमता है, आप प्रसन्न हो गए अपनी लड़की को देने के लिए, आप बोलोगे हाँ हाँ बहुत अच्छे। तो दक्ष कहते मेरी कोई इच्छा नहीं थी इनसे विवाह करने की, इनको अपनी पुत्री देने की, केवल ब्रह्मा जी के कारण मुझे देना पड़ा, ब्रह्मा जी भी उधर ही बैठे हैं, तो ब्रह्मा जी के कारण मुझे देना पड़ा, इन्होंने कहा इसलिए मैंने दिया। और भागवत में वर्णन है कि साधारणतः पिता को नाम से नहीं पुकारा जाता, लेकिन इतना क्रोध आ गया दक्ष को कि वो भूल गया कि मेरे पिता हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि पिता ने मुझे कहा इसीलिए, उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने कहा, पिता का नाम लेकर कहा, मतलब क्रोध में ये भी भूल गया कि किससे बात कर रहा है। देखिए ये क्रोध है, जब क्रोध आ जाता है व्यक्ति को सब कुछ भूल जाता है, कौन है, किससे बात कर रहे हैं, किसका अपमान करना है, किसका मान करना है, सब भूल जाता है, केवल हरेक का अपमान कर देता है। तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने कहा इसीलिए मैंने विवाह किया, मेरी कोई इच्छा नहीं थी इससे विवाह करने की, इससे अपनी पुत्री को देने की, सती को देने की। और शिव जी बहुत आराम से बैठे थे, शिव जी को कोई चिंता नहीं, शिव जी ऐसे नहीं कि उसने ऐसा कुछ बोल दिया तो वो भी खड़े हो गए, अपना त्रिशूल निकाल लिया और बोला अभी बताता हूं तुझे, कुछ नहीं, शिव जी आराम से बैठे। तो देखिए शिव जी कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि कोई चिंता नहीं है, क्या है, कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। ये बहुत सुंदर सिद्धांत है, इसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हम लोग बड़े दुख में हो जाते हैं, आप समझिए चलते हैं कहीं सड़क पे जा रहे हैं, कोई आपका आके अपमान कर दे तो आप क्या करेंगे, पकड़ के वहीं उसको धाड़ धाड़ धाड़, तेरी हिम्मत कैसे हुई, जानता नहीं मैं कौन हूं, इत्यादि इत्यादि, या कोई कहीं और आपका अपमान कर दे। लेकिन बड़ा सरल है अगर इस सिद्धांत को सीख लें। भगवान बुद्ध एक समय अपने मित्र के साथ जा रहे थे तो उनको किसी ने आकर बहुत बुरे बुरे शब्द कह दिए, 10 बुरे शब्द कह दिए, वो आराम से सुन रहे हैं, फिर वो चला गया। इस मित्र ने पूछा अरे कैसे आदमी हो तुम, अनावश्यक उसने आकर तुम्हें इतने बुरे शब्द किए और तुम सुन रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे पास 10 लाख रुपए हैं, तुम लेकर आते हो मुझे देने के लिए, मैं स्वीकार नहीं करता तो वो 10 लाख किसके हैं। तो मित्र ने थोड़ा सोचा और कहा अगर मैं 10 लाख लेकर आता हूं, तुम्हें देता हूं, तुम स्वीकार नहीं करते तो मेरे हैं। तो उन्होंने कहा बस यही बात है, वो व्यक्ति 10 बुरे शब्द लेकर आया, मुझे दिए, मैंने स्वीकार नहीं किए, किसके हैं, चिंता क्यों करना। बड़ा सरल है ना, तो क्यों चिंता करना। और दूसरा हमें यह जानना चाहिए कि यह व्यक्ति जो लेकर आ रहा है ये दरअसल केवल निमित्त है, निमित्त अर्थात इसको तो भगवान ने चुना है मेरे कर्म मुझ तक लाने के लिए, इसकी कोई गलती नहीं है। जैसे कभी कभी हम कई बार उदाहरण देते हैं, डाकिया कोई बुरी खबर ले आता है, पहले आते थे ना टेलीग्राम्स, आजकल तो बंद ही कर दिया सरकार ने टेलीग्राम, जरूरत ही नहीं है, ईमेल एसएमएस फोन इतने हो गए, पहले बहुत कठिन था। अगर आप दिल्ली में हैं और या कारोबार में काम कर रहे हैं, आपका फैमिली दिल्ली में है तो बात करना हो तो वो ट्रंक कॉल लगाइए, बैठे रहिए, फिर घंटी बजेगी, वो कहेगी अभी रुकिए प्रयास कर रहे हैं, फिर बैठ जाइए, फिर वो 3 मिनट के लिए होगा, 3 मिनट के बाद वो पूछेगी 3 मिनट हो गए कट करें, ऐसे होता था और पैसा भी बहुत जाता था। हमें ध्यान है 180 मिलाना पड़ता था ट्रंक कॉल लगाने के लिए और फिर वेट करना। अभी कुछ नहीं है, जहां हो आप कहीं पर भी हो, रस्ते में चल रहे हैं, सड़क पर घूम रहे हैं, पर्वत के ऊपर है, वहां से फोन लगा दीजिए, मैं पर्वत के ऊपर हूं, कूदने जा रहा हूं, आत्महत्या कर रहा, जो भी है, आजकल लोग करते हैं ऐसा। तो ऐसे उस समय तो नहीं, तो टेलीग्राम दिया जाता था उस समय, तो हर व्यक्ति टेलीग्राम सुनते ही डर जाता था। अगर कोई घर में आता था डाकिया कि टेलीग्राम, आदमी घबरा जाता था, कुछ तो हुआ। टेलीग्राम ज्यादातर किसी की मृत्यु पर ही आता था, निश्चित था। टेलीग्राम आया मतलब यही है, किसी की मृत्यु हो गई तुरंत आओ। तो देखिए अब डाकिया कितनी बुरी खबर लेकर आ रहा है, हमें कितना दुख होगा। मान लीजिए आपका कोई प्रिय व्यक्ति मर गया, तो क्या हम डाकिया को पकड़कर मारने लगते थे? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना बुरा समाचार दे? नहीं, हम तो उसको धन्यवाद देते थे, बहुत अच्छा हुआ तुम ले आ, ये लो 10 रुपए और रखो हमारी तरफ से, अब हम जल्दी से जा सकेंगे वहां पर। तो इसी तरह अगर कोई व्यक्ति अपमान करता है हमारा, तो हमें भी यही मानना चाहिए कि ये तो निमित्त है। तो शिव जी ने यही माना, ये क्या, ये तो निमित्त है, ठीक बोलने दो, क्या फर्क। और जब हम स्वीकार ही नहीं करें उसे, तो पैसे मेरे नहीं है, वो उसके हैं, वो चाहे कितना भी कह ले, लेकिन हम लोग उसको सहन नहीं कर पाते, हम झगड़ा करने लगे। तो शिव जी आराम से बैठे थे, तो बहुत कुछ बोलने लगे, इसने तो सारा नाम खराब कर दिया, ये ऐसा व्यक्ति है, मेरी पुत्री का जीवन, मेरी पुत्री, और कहने लगा कि ये इसकी आंखें देखो बंदर की तरह आंखें हैं। दक्ष का वर्णन भागवत में है, शिव जी को कह रहे हैं इसकी आंखें देखो बंदर की तरह आंखें हैं, और मेरी पुत्री उसकी आंखें तो एकदम हिरणी की तरह हैं। और फिर ऐसी पुत्री को मैंने इसको दे दिया, कितना बड़ा मैंने पाप किया, अपराध किया, और आज देखो ये मुझे मान देने के लिए उठकर खड़ा नहीं हुआ, ये अपने आप को बहुत महान समझता है, इतना महान कि मुझे मान देने के लिए नहीं उठा। तो देखिए दक्ष को कष्ट क्या हुआ था, ये कष्ट नहीं था कि शिवजी क्या करते हैं, एक ही कष्ट था, मुझे मान नहीं दिया। हम सब भी ऐसे ही रहते, अगर मुझे मान नहीं मिला तो हमें दुख हो जाता, हम क्रोध में आ जाते हैं। और अगर किसी दूसरे व्यक्ति को मान नहीं मिला और वो अगर क्रोध में आए, तो हम क्या उसको कहते हैं, अरे छोड़ो कोई बात नहीं, क्या है, छोटी सी बात है, इतने पे क्रोध नहीं करते हैं, क्या हो गया उसने 2 शब्द कह दिए तो कोई बात नहीं जाने दो। लेकिन वही हमारे साथ हो तो हम तो एकदम, यानी जैसे हम लोग कई बार उदाहरण देते हैं कि जैसे हमारी कार है मान लीजिए, और किसी ने कार के ऊपर कोई पत्थर फेंक दिया, बच्चे ने बड़ा पत्थर लेकर फेंक दिया नई नई कार पे, तो क्या आप ऐसे कहो कोई बात नहीं बच्चा है हो गया कोई दूसरी कार खरीद लूंगा, अब ऐसे कहोगे? नहीं, आप तो सारे शहर में तो नहीं, कम से कम उस स्थान में तो हंगामा कर दोगे, अरे अभी नया कार खरीदा, इतने लाख की कार थी, किसका बच्चा है, इसको ये नहीं पता वो नहीं पता। और वही अगर आपके पड़ोसी की कार के साथ ऐसा हो जाए और पड़ोसी चिल्ला रहा हो, तब आप जाके उसको कहोगे छोड़ो बच्चा है, उसको क्या पता, मार दिया पता, कार ही गई है ना, क्या है, ले लेना दूसरी, ठीक करा लेना, इंश्योरेंस मिल जाएगा, क्यों चिंता करते। वो उस समय हमें सब याद आता, लेकिन जब अपने ऊपर अपमान हो, तब जो व्यक्ति ऐसी स्थिति में रहे वो सही में ज्ञानवान है। ज्ञान का अर्थ है कि ऐसी स्थिति में विचलित नहीं होना। भगवान भगवद गीता में इसको कहते हैं, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमः पायिनो नित्यास्ताम तितिक्षस्व भारत। जो सहन करता है इन सब चीजों को, सुख दुख मान अपमान, वो व्यक्ति सही दृष्टि में धीर पुरुष है, ज्ञानवान है। तो इस तरह से अपमान किया और दक्ष वहां से चले गए। सब लोगों ने रोकने का प्रयास किया, ब्रह्मा जी ने रोकने का प्रयास किया, अन्य ऋषि मुनि, अरे छोड़ो छोड़ो क्या कर रहे हो, क्यों इतना क्रोध, रहने दो, सुना नहीं, छोड़कर चला गया यज्ञ वहां से। तो शिव जी बड़े आराम से बैठे थे, तो शिव जी तो बैठे रहे, लेकिन जो शिव जी के गण थे वो चुप नहीं बैठने वाले थे, है ना। शिव जी ठीक है, शिव जी को क्या मान अपमान, ठीक है, बोलकर चला गया चला गया, क्या फर्क पड़ा, कोई एक दृष्टि से देखिए तो क्या फर्क हुआ, अपमान कर दिया क्या फर्क हुआ, शिव जी को कोई फर्क नहीं। लेकिन जो शिव जी के गण हैं जिसमें नंदी इत्यादि आते, वो नंदी विशेष करके खड़ा हो गया, वो चुप नहीं रहा। दरअसल प्रभुपाद लिखते हैं कि ये सही था, शिवजी चुप रहे ठीक है, लेकिन शिवजी के गणों को चुप नहीं रहना चाहिए था। इसी तरह अगर हम लोग देखें कि भगवान का अपमान हो रहा है, भक्तों का अपमान हो रहा है, तब हमें चुप नहीं रहना चाहिए। हमारा अपमान हो रहा है हमें चुप रहना चाहिए, लेकिन भक्तों का अपमान हो रहा है हमें चुप नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह शिवजी तो चुप रहे, लेकिन जो उनके गण थे वो चुप नहीं रहे, विशेष करके नंदी। और नंदी उठकर खड़े हो गए उस समय, क्योंकि उस समय क्या हुआ था, जब ये दक्ष ऐसे बोल रहे थे तो वहां जो उपस्थित ब्राह्मण थे उन्होंने विरोध नहीं किया। विरोध करना चाहिए था ना कि ये गलत बोल रहे, तुम ऐसे मत बोलो शिव जी के प्रति, तो उन्होंने विरोध नहीं किया। तो दक्ष तो चले गए, अब वहां जो उपस्थित ब्राह्मण इत्यादि थे उनके बारे में उनको अब नंदी बोलने लगे हैं। तो उन्होंने क्या बोला और आगे क्या हुई कथा, ये अगले रविवार को हम लोग सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत सुंदर ये कथा है, आगे चलती जाती है, नंदी जो कहते हैं, फिर आगे क्या होता है, फिर सती और शिव जी का संवाद है, फिर और एक यज्ञ है, ये सब वर्णन अब अगले रविवार को होगा। हरे कृष्णा।